अनुराग उसको उत्पन्न हो गया। कौन अनुराग हो गया? कौन? भाव तो पहले से है और भाव से उनमें प्रेम आया, प्रेम से बढ़ करके फिर प्रणय और अनुराग। राग अनुराग वहां पर अनुराग जाता अनुरागो, अर्थात वो रंग बार बार चढ़ता जाता, नया नया नित्य नवीन रंग उसको। जब जब कीर्तन करते हैं भाव अनुरूप आ जाता। जैसे गोविंद नाम किया, गोविंद नाम में जब गो पर अधिक जोर देते हैं एक भाव, गोविंद पर जब जोर श्रेष्ठ देते हैं अन्य भाव, जब तीनों पर देते हैं तो एक भाव, उनमें से कोई एक थोड़ा सा कम किसी पर अधिक देते, नाना प्रकार के भाव उसमें आते हैं। गोविंद हमारी इंद्रियों में जो गोपियों के नहीं, जो बल्लभ हैं वो हमारे इंद्रियों के प्रत्येक रोम रोम में वो व्याप्त हो, बिंद बने रहना उसमें स्थित हो जाए। हमारे जितने इंद्रियां हैं सब में वो व्याप्त होकर करें, बिंद की माने व्याप्त हो। इस प्रकार से कितने इसके अर्थ होंगे, यदि गो का अर्थ ले जाए गोप सखा एक अर्थ हो जाएगा, यदि गो का अर्थ ले गायों की मंडली में उनको चराने वाले एक अर्थ, गो माने यदि गोपी ले लेंगे तो अन्य अर्थ, गो माने गोपी यशोदा अर्थ होगा तो उसका एक दूसरा। इस तरह से भावों के अनुरूप वो अनुराग उनका प्रत्येक क्षण बढ़ता चला जाता है। द्रुतचित्त उच्चई, द्रुतचित्त मैंने द्रुत मैंने होता है अविलंब, बहुत शीघ्र से, यहाँ नहीं। और यहाँ पर द्रुत चित्त अर्थात जो द्रवित चित्त है, श्रवण करते ही एकदम चित्त उनका द्रवित हो जाता है, रोमांच कंप अश्रु पुलक इत्यादि हो जाते हैं। उत्तम भागवतों के ये लक्षण है, साधक में रखा जाएगा तो उत्तम भागवत और नहीं तो सिद्ध हो गया तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर साधक के लिए कहा गया, इसलिए उच्च भक्त, उच्च भक्त कौन होगा? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अध्ययनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति जब कोई संसारिक हमारी कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाए, जीवन का निर्वाह कैसे होगा? अभी तो चल रहा है, गुरु जी हैं, गुरु जी नहीं रहेंगे तो जीवन का निर्वाह कैसा होगा, इसलिए उसके लिए व्यवस्था करनी है। और कृष्ण प्रेम रह गया, कोई भी कामना, ये चीज हमारे अंदर में अभाव है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझको पढ़ना है, ये अभिलाषा आ गई और पढ़ने पर जोर चला गया, भक्ति रह गई। हरिदास ठाकुर जैसा जीवन हो, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा जीवन हो, ऐसे जीवन हो, प्रहलाद महाराज जी जैसा जीवन हो, तब ये जा सकते, रूप सनातन जैसा जीवन हो, कोई भी अन्य अभिलाषा, कृष्ण भक्ति की वृद्धि के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा, मुझे अब गुरु जी को छोड़ करके अपने सुख की अभिलाषा कुछ है, मैं उनसे दूर रहने से हमारे लिए ये सुविधा है, बस हो गया, कोई भी अभिलाषा नहीं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें, सुख में सुख, बस उसी दिन कृष्ण मिल जाए, अधिक दूर नहीं। किंतु ये भाव हम लोगों के आते नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह जाती है। तो द्रुत चित्त उच्चई, चित्त एकदम द्रवित हो जाएगा वैसे नाम करने से, जब कोई अन्य अभिलाषा नहीं होगी, जो तप व्रत जप जो कुछ भी है ज्ञान इत्यादि सब उसमें दूर हो जाए, इनके द्वारा चित्त शुद्धि होने पर तब भक्ति होगी, तो भक्ति बिगड़ जाएगी। ज्ञान पहले तत्व ज्ञान हो, इसके बाद में और सब हो, इसके बाद में भक्ति करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए ज्ञानम ज्ञाने प्रयासम उद्पास्य, ज्ञान की भी इच्छा को अभिलाषा इत्यादि को दूर रखकर स्थाने स्थिता तन्वांग मनोवी अपने स्थान पर रह करके, अपने स्थान माने भक्तों के स्थान पर रह करके, तन मन वचन सब से उनकी कथाओं के आदर पूर्वक श्रवण में, जो कथा वाचक है उसके प्रति, जो कथा के श्रोता हैं उनके प्रति, जो कथा के वक्ता हैं उनके प्रति, कथा के स्थान को सबको प्रणाम करें। कल अभी बतलाया ना सुखदेव गोस्वामी जी, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। किसको? श्रोता और वक्ता। कौन? श्रोता तो खुद है, वक्ता तो वो खुद है। भावी काल में जो वक्ता होंगे भागवत के और श्रोता होंगे भी, है ना, कुछ हई आछे हई दे जो तो प्रभु कौन
प्रभु जो
प्रभु पृथ्वी में आप तक जितने भी होंगे भविष्य में प्रभु के दास, कृष्ण के दास, महाप्रभु के दास, श्रीमती राधिका के दास, जितने होंगे अभी समय दंतों में घास लेकर के दीन ही होकर के उनकी चरण की वंदना कर रहा है। ऐसे ही सबके लिए, ये भी उन लोगों के लिए कहा है। हसत तथो चित्त द्रवित हो जाता है, तब कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी रुलाता भी है, कभी गाता है, कभी उन्माद की भांति नृत्य करने लगता है, कभी जमीन में लोट पोट करने लगता है। उसकी स्थिति को वर्णन नहीं किया जा सकता, किस भाव में कैसे हो रहता है वो स्थिति हो जाती है। वो क्या जिसको मन से भी बतला और क्या बतलाया नहीं जा सकता, ऐसे ही हो जाता है। एक शब्द है आजकल, शब्द मुझे याद नहीं, निर्वचनीय, अनर्वचनीय, अनर्वचनीय हो जाता है। हंसता किस लिए है? चिंतन कर रहा है, कुछ लीला चिंतन करते करते हठात उसने कृष्ण को दर्शन किया, बच्चों के साथ में देख रहा है, ये खेलते खेलते एक घर में घुस गया। उसके बेटे को कह दिया, ये जाओ तो बछड़े को खोल दो, बछड़ा उसने खोल दिया उसका बेटे, और मैया से जाकर के कह देना ये बछड़ा दूध पी रहा है, वो दूध पीने लग गया, बछड़ा खोल दिया। और इतने में जब मैया वहाँ से दौड़ी तो ये सब बच्चे सब उस घर में घुस करके जितना मक्खन टखन सब चोरी करने लगे, ये देख करके या और कोई लीला देखा। कभी रोता है, देखा जब विरह की, कृष्ण मिले अभी अभी अंतर ध्यान हो गए, या गोपियों को छोड़ करके चले गए मथुरा, उसके हृदय में भावना आई, और जैसे वो रो रही है ये भी रोने रोदती। गायक उन्माद की भांति, उन्माद ग्रस्त होकर के जैसे पागल कभी गाता है, कभी इधर का बात उधर का गाता है, ऐसे ही उन्माद होकर के कृष्ण लीला संबंधी बातों का ये गान करने लगते हैं। कभी जमीन में लौटने लगते हैं, कभी हाय हाय करने लगते हैं, उनका ऊपर में किसी का अंकुश नहीं है, प्रेम के मारे, प्रेम का अंकुश उनके ऊपर में केवल है। लोकवाद्य और लोकबाह्य अर्थात लोक की उपेक्षा नहीं करके कहाँ वो नृत्य करने लगता है, किसी का वो ये नहीं कहता ये लोग क्या कहेंगे, अभी हम लोगों को है, गले में यदि माला पहन ली, तिलक पहन ली तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग नहीं पहने। माला लेकर के बैठ जाए हरि नाम करने की तो घर वाले लोग कहेंगे ये क्या करने लगा है, अभी लोग अपेक्षा है। इस तरह से सभी अभी लोग को अपेक्षा है, उनकी लोग की अपेक्षा नहीं होती ये क्या कर रहे हैं नहीं। तो ये लक्षण किसका बतला है? महाभागवत लोग, भगवान की भक्ति ही ऐसी है, भगवान का नाम ही ऐसा है जो कुछ दिनों के बाद में ऐसा करा देगा। ये कृष्ण प्रेम को पाने का उपाय है, सबसे श्रेष्ठ कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला का चिंतन करते हुए मन को लगा करके और जीवा के द्वारा कीर्तन करें, जोर जोर से करें। हम लोग कहते हैं धीरे धीरे नाम ना, जो दूसरा कोई न सुन ले, इसलिए मन इधर उधर जा सकता है। और जोर से यदि चिल्ला करके करेंगे ना, मन अपने आप वहाँ पर स्थित हो जाए। इसलिए उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने की विधि बताई गई। ऐसे भक्तों की कोई एकांतिक अपना भाव हो, साधन अवस्था से ही एक भाव पर उसका चित्त जम जाता है, पांच भाव में से कोई एक भाव के ऊपर, और तब फिर उसी के अनुसार में अपना साधन भजन जो कुछ करता है उसी का अनुरूप करता है। भाव में स्थिर हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा में हम क्या चाहते हैं, यदि ये स्थिर नहीं हुआ तो ये सब भाव नहीं है। इसलिए उसकी कैसी निष्ठा रहनी चाहिए, एकांतिक निष्ठा का एक और उदाहरण यहाँ पर देखें। जह कौमार हर स एव ही बरह ता एव चैत्र क्षपास्ते चोन्मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोदसिरे समुद्रकंठते। हम लोगों ने रथ यात्रा के समय में बहुत बार इस श्लोक को हम लोगों ने पाठ किया है, प्राय सभी लोग जानते होंगे, जो कभी संक्षेप में बतला रहा हूं। ये उक्ति गोपियों में जो सबसे प्रधान है वो श्रीमती राधिका जी की। कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका पहुंच गए और वहाँ पर उनकी शादी हो गई। 16,108 महिषियों से उन्होंने विवाह कर लिया और उनके पुत्र प्रपौत्र भी जन्म दे दिए। काफ़ी वर्ष हो गए। इसके बाद में जब वो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं, उस समय की बात, गोपियाँ भी नंद बाबा यशोदा के साथ में वहाँ पर पहुँचे, कुरुक्षेत्र पहुँचने पर कृष्ण सबको छोड़ छाड़ करके, समस्त कुटुंबियों को, आत्मीय स्वजनों को छोड़ करके नंद बाबा यशोदा जी से मिले। नंद बाबा यशोदा जी भी बड़ी चतुर हैं, उन्होंने भी देखा जी ये गोपियाँ अब तो मरी मरी, अभी कृष्ण के विरह में अभी तक दूर थी तो इसलिए उनके प्राण धारण हो रहे थे, किंतु अब निकट में आकर के यदि उनसे नहीं मिलेंगी तो अब तो उनका मरना अवश्य, अभी मरने वाली थी, इसलिए जानबूझ करके वो लोग वहाँ से हट गए। बलदेव जी भी बड़े चतुर बुद्धिमान, इसलिए मैया के साथ भी वहाँ से निकल गए। इसलिए दोनों में, गोपियों में और कृष्ण में वहाँ पर मिलन हुआ। इसके बाद में गोपियों ने, कृष्ण ने गोपियों से कुछ कही, अंत में कृष्ण को उन्होंने निवेदन किया जे आप वृंदावन में पधारे। वही प्रश्न उसी को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कौन कर रहा है? महाप्रभु जी रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा का यह मूल सार भाव है। रथ यात्रा क्यों और कैसे है, इसी के लिए। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रेम में आविष्ट हैं राधिका के भाव। जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ रहे हैं, उन्हें सोचा कि हमारे मनोरथ पर ये कृष्ण चढ़ रहे हैं और इनको हम वृंदावन में ले जा रहे हैं, और समस्त गोपियाँ मिलकर के उनको खींच रहे हैं। आदमी कोई खींच रहा है वो ये भावना नहीं, ये गोपियाँ ही खींच करके और ले जा रहे हैं। राधा जी के अनुगत्य, राधा जी गोपियों को निर्देश रहे कि ऐसे वृंदावन की तरफ में इनको खींच करके लो। कभी कभी वो रथ से पीछे हो जाते, अच्छा ये सभी गोपियाँ जा रही हैं ब्रज में, अब देखें जैसे मैं नहीं जाऊँगी, और ये सब लेकर के जा रही हैं, इन सबको लेकर के ये वृंदावन में जाएंगे कि नहीं, परीक्षा के लिए कृष्ण पीछे हो गए।
महाप्रभु जी
उसमें राधा जी हो जाती हैं, तो राधा जी अपने बन करके भावना से ऐसी उस समय महाप्रभु जी की मनस्थिति हो गई, ऐसे तदात्म हो गए कि राधा जी सचमुच में राधा जी का तादात्म्य हो गए और होकर के उनकी परीक्षा कृष्ण की कर रहे। जब वो चले तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जो रथ पर चढ़े थे थोड़ा सा मंद रूप में मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके रथ को खड़ा कर दिया, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारा रथ नहीं चलेगा। तो महाप्रभु जी अर्थात राधा जी तब हंसते हुए, जाओ यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये इतने हजारों लाखों गोपियों के जाने पर भी ये ब्रज में नहीं जाए। कृष्ण कहते हैं जब तुम यदि नहीं गई तो हम किस लिए ब्रज में जाए, तुम तो जहाँ रहेगी वहीं पर रहेंगे। तो ये प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के फिर सामने आकर के चलने लगी। जो लाखों आदमी खींच नहीं रहे थे वो रथ अपने आप हुड़ करता हुआ अपने आप ही चलने लगा। इसको देख करके श्रीमती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय में ये राधा जी कह रही हैं, राधा जी का भाव है कि देखो वो काव्य प्रकाश का यह श्लोक जो साहित्य में MA BA में पढ़ाया जाता है या साहित्य दर्पण में, उसका ये श्लोक यह अलंकार कोई यह अलंकार है, इसलिए उस साहित्य दर्पण में जो विद्वान लोग होते हैं इस श्लोक का बहुत आदर करते हैं या अत्यंत भाव युक्त है। कोई एक रमणी है वो किसी अपने रमण से कह रही है, कोई एक नायिका अपने नायक से अपने प्रियतम से वो कह रही है, देखो रेवा रोधसी बेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। हमारा मन तो यही कह रहा है कि हम लोग जब जिस समय पहली स्थिति में मिले थे उस समय हम लोगों का ब्याह नहीं हुआ था, अब तो विवाह हो गया है। हमारा जब विवाह नहीं हुआ था पहले की बात याद करो, नदी रेवा नदी, रेवा नाम की नदी, उसमें बेतसी वन, बेतसी माने बेत का वन, झाड़ियां और कुंड, समीप ही में कदम्ब के पेड़ हैं, कदम्बला कदम्ब अनिला है ना,
कदम्ब
अनिला, यदि कदम्ब के पेड़ ना रहे तो वहां से कदम्ब की वायु कहाँ से आएगी। इसलिए असल में नदी के किनारे तो कदम्ब के वृक्ष निकट में तो होंगे नहीं, नदी से लगे हुए पानी में ही बेत बेत के पेड़ हो जाते हैं, वो पानी में ही होते हैं फलते फूलते हैं। तो वो बेत के पेड़ नदी के अंदर में है और उसके पास ही में सुंदर उपवन है, उसमें बेली चमेली इत्यादि फूल भरे हैं और उसमें कदम्बों की पंक्तियाँ और कुंज बने हुए हैं सर, वहाँ से सुंदर सुगंधित हवा चल रही थी उस समय जिस समय हम लोगों का प्रथम मिलन हुआ, उस समय की बात। उस समय तुम भी कुछ छोटे उम्र के थे, हम भी किशोरी थी, तुम भी किशोर थे, दोनों मिले, किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप आंखों के इशारे से ही हम दोनों में, कोई दूती नहीं, कोई कुछ नहीं मिलाने वाला, बस दोनों दोनों से हम लोग वहाँ पर मिले, स्वच्छंद रूप में मिले, कोई भी विघ्न देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तीसरा कोई था ही नहीं। वही चैत की रात थी, पूर्णिमा की रात, जा कौमार हरस एव ही बरत एव चैत्र क्षपा। अभी आप हमारे पति हैं, उस समय आप हमारे पति नहीं थे किंतु आप वही व्यक्ति युवक हैं, मैं वही युवती हूँ और चैत्र महीने की बसंत ऋतु की ये रात थी पूर्णिमा की, मालती बेली चमेली जुई इत्यादि फूल खिले हुए हैं, नदी में कलकल शब्द हो रहा है, उसमें भी कमल इत्यादि फूले हुए हैं और पेतों से टकरा करके जैसे अभी हम लोग गए थे ना हरिद्वार में, वहाँ पर भी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और उससे गंगा जी बहती है कलकल करके शब्द, इधर से उधर उधर से ऐसी बाती चलती चलती इछलाती हुई मानो वो चल रही हैं। तो वही रेती नदी बह रही हैं, कमल के फूल उसमें खिले, सामने में मालती और तरह तरह के फूल सब खिले हुए हैं, और प्रौढ़ कदम्ब अनिल, माने क्या, उसके फूलों की सुगंध लेकर के कदम्ब की, बहुत ही सुंदर सुगंध होता है भिन भिन, और उसको लेकर के बाई प्राउड होकर के माने धीरे धीरे हो गई है, चल रही है, माने सब कामोद्दीपक चीज है, माने प्रेम के उन्माद करने वाले सात चाय एवं अश्मी, मैं वही हूँ जो आज आपके सामने हूँ और आप भी वही हैं, तथापि तत्र सुरत व्यापार लीलो विलो, उस समय दोनों में जो प्रेम था उसकी अनुकूल ये सब चीजें थी, किंतु आज वो चीज नहीं, मेरा मन तो वही रेवा नदी के तट पर बेतसी के बन के पासी में जो कदम्ब के कुंज यहाँ पर हैं उसी में हम दोनों मिलकर के बातें कर रहे थे, रसमयी बातें रसभरी बातें, और प्रेम से मिल रहे थे, उसमें विघ्न देने वाला या लज्जा की कोई बात नहीं थी, कोई दूसरा था ही नहीं, साक्षी केवल ही पेड़ पौधे और पमन और वो सुगंध यही सब, और रेवती नहीं, यही महाप्रभु जी भाव में उन्माद होकर के कह रहे। उस समय में हजारों लोग जय जय जगन्नाथ की ध्वनि कर रहे थे, एक साथ में मृदंग मिलकर के मानो मेघ गर्जन कर रहा था, भक्त लोग सुरीले कंठ से ऐसे गा रहे थे मानो आकाश तक वो भेद करके उनकी ध्वनि मिली, सब मिला करके कोई किसी की बात नहीं सुनता था, और महाप्रभु जी भाव में गदगद होकर के आंखों में आंसू लेकर के मतवारे होकर के प्रेम में और श्लोक का पाठ कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति उसको अच्छी तरह से सुन रहा है, कौन, वो छोटा सा, और एक व्यक्ति उसको समझ रहे थे, वो थे स्वरूप दामोदर, वो भी भाव में तन में थे, और ये बालक, बालक मैंने क्या है, ये मैंने प्रेम का बालक रूप गोस्वामी जी, त्रिषित नैनों से और त्रिषित हृदय से उसके एक एक अक्षरों पर वो चल रहे थे, सुन रहे थे, मानो कानों से पी रहे थे, उनका ध्यान नहीं ये नहीं था कि मृदंग बज रहा है, जय जयकार जगन्नाथ जी का हो रहा है, रथ कहाँ चल रहा है, क्या क्या शब्द हो रहा है, उसमें कौन है, उन्होंने देखा कि महाप्रभु के पास में कोई खड़ा ये नहीं देखा, उनको ये पता नहीं चला कि रथ की रस्सी कहाँ है और कौन किधर में दौड़ रहा है, उनका लक्ष्य कहाँ था, महाप्रभु के मुखारविंद में था, और उनसे जो बातें निकलती थी उनको पूरा पूरा सुनाई देता, अर्जुन के लक्ष्य भेद की तरह, कोई तरफ भक्ति ऐसे ही होती है, एक लक्ष्य एक उद्देश्य यदि होगी तो वो भक्ति साबित होगी, और यदि लक्ष्य बहुत हो गया ना, चिड़िया को देख रहे हो हाँ, डाल को देख रहे हो हाँ, हमें देख रहे हो तो जी जरूर आपको देख रहा, भला आपको कैसे नहीं, गुरु को कैसे नहीं देखूंगा, और सभी कुछ दिखाई दे रहा सामने का, ठीक है धनुष बाण रख दो, अर्जुन से पूछा क्या देखता है, हमें देखता है नहीं, इन लोगों को नहीं, डाल को नहीं, पेड़ को नहीं, चिड़िया को नहीं, चिड़िया के और सब गला को देखता है नहीं, मुंह को देखता है नहीं, नाक देखता है नहीं, हवें देखता है नहीं, आंख देखता है नहीं, क्या देखता है, बस उतनी देर की चुका, बस मारो झट लग गया, ऐसे गुरु परीक्षा करते हैं भगवान, ऐसे तुम भक्ति करता है हाँ, किसका, नारायण का करता हूँ, जगन्नाथ जी का करता हूँ, ब्रह्म का करता हूँ, गणेश जी की भी मूर्ति हमारे पास में है, दुर्गा जी की, काली मैया की, संतोषी मैया की, नहीं नहीं जितने भी देवता हैं 1,833 करोड़ देवता हमारे, सबका फोटो लगा रखे हैं, सबकी पूजा दुखदेव से करते हैं, यमुना जी के पास जाता हूँ द्वारका दर्शन करके, वहीं से परिक्रमा करता हुआ बंगाली घाट सप्तर्षी, और इधर पेड़ पौधे भी हैं उनको भी जल चढ़ा देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, वहाँ से लौटा, नहीं तुम्हारी पूजा नहीं, इसके बाद में मैं तो केवल विष्णु स्वरूप को मानता हूँ, नारायण को, लक्ष्मी नारायण को, विष्णु को, द्वारकाधीश को, और बिहारी जी को, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये सब को, हुआ तो यह भी है, किंतु और आगे बढ़ो तो द्वारकाधीश को भी, बिहारी जी को भी, गोविंद जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, कृष्ण को, सबको मानता और किसी को नहीं। अजी ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ो। तब वो बोलेंगे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, और आगे बढ़ो। तब वो कहेंगे गोपीनाथ, बस ठीक, वहां पर गोपीनाथ। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य भजन होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में जो कहा गया मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ गौड़िया परे आत्मसार, ये एक ही स्वरूप में तीन अवस्थाएं हैं। एक ही कृष्ण के, गोपीनाथ की, ये तीन तीन स्वरूप। पहले अवस्था में उनके साथ में संबंध होगा, तब उन्हीं का नाम होगा
मदन मोहन।
जब वो उनकी सेवा आरंभ करेगा तो अभिधेय, तब तो वो उनका नाम हो जाएगा। और जब अभिधेय का फल जबकि कृष्ण मिल जाएंगे उनको, तो उन्हीं का नाम है। एक ही वस्तु, एक लक्ष्य भी रहेगा तब भजन होगा, और मन इधर उधर में रहेगा तो कोई भजन नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि एक में निष्ठा। महा वो रूप गोस्वामी सुन रहे थे, सुन करके वो रथ यात्रा, रथ पहुंच गया कहाँ, सुंदराचल में पहुंच गया, अर्थात वृंदावन गुंडीचा मंदिर में पहुंच गया। सब लोग क्लांत हो गए थे। पहुंचने के बाद में ठाकुर जी अपने घर में गए, उनकी आरती हुई। आरती होने के बाद में सब लोग आकर के स्नान इत्यादि किया, और महाराज प्रताप रुद्र राजा ने उनके लिए तरह तरह के मिष्ठान, पकवान और सब खाने की व्यवस्था की। महाप्रभु ने सबको बैठा करके अपने खिलाना चाहा, किंतु भक्तों ने परोसने के बाद में कहा कि आप नहीं बैठेंगे तो ये लोग नहीं खाएं। फिर इनको भी बैठाया, नित्यानंद प्रभु बैठे, अद्वैताचार्य बैठे, और सब स्वरूप दामोदर और सब लोग अपने आप परमेशन में लग गए। वाणीनाथ को भी लगाया, भोजन के बाद में विश्राम किया। दूसरे दिन फिर ऐसे, अब वो दूसरे दिन ये महाप्रभु तो उधर रह गए, किंतु ये कहाँ चले गए, हरिदास ठाकुर के यहाँ, और वहाँ जा करके हरिदास ठाकुर के साथ में अपने को दीनहीन समझ करके और वहाँ पर श्लोक को लिख लिया। वो श्लोक नहीं लिखा, वो तो अपने मन में रखा
अनुरूप,
और वैसे ही अनुरूप, उसी के अनुरूप, भाव के अनुरूप उन्होंने दूसरा श्लोक लिखा, और लिख करके ताल के पत्ते पर और लेकर के लगा दिया छप्पर में। और सवेरे ये स्नान करने गए, इतने में महाप्रभु जी स्नान करके और वहाँ पर आए। हरिदास ठाकुर को प्रतिदिन दर्शन देते थे। हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त थे, सोचते थे मैं बहुत दीन हूँ, मुसलमान हूँ, मेरे चलने से रास्ता भी अपवित्र जगन्नाथ जी का हो जाएगा, इसलिए भक्त लोग अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए उस रास्ते पर मैं नहीं चलूंगा जिससे कि भक्त लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। इसलिए वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं जाते, दूर से जगन्नाथ जी का वो चक्र दर्शन करके और ध्वजा जो होती है उसको दर्शन करके और साष्टांग प्रणाम करते और भजन करते। इसलिए महाप्रभु जी को बाध्य होकर के वहाँ पर
जाना
पड़ा, महाप्रभु जी जाते थे, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कराते। महाप्रभु जी जब गए तो जाकर के हरिदास जी का कुशल समाचार पूछा, और इतने में उनका हाथ ऊपर में ऐसे पकड़ने के लिए पहुंचा तो वो लग गया पत्ता उनके हाथ में, तो पत्ता लगा तो उन्हें निकाल लिया। निकाल करके देखा भी ये तो हमारे भाव को कैसे इसमें लिख दिया, कौन लिखा। हरिदास ठाकुर जी से पूछा, उन्होंने कहा कि वही बालक जो आया है ना रूप नाम का, वही लिखा। अच्छा, ठहर गए, प्रतीक्षा करने लगे। आई इतने में जब वो स्नान करके आए रूप गोस्वामी जी, साथ ही साथ उनको पकड़ करके पीठ पर थप्पड़ लगाया, प्रेम का थप्पड़ लगाया, तुमने कैसे हमारे मन का भावों को जान लिया। उस समय स्वरूप दामोदर, राय रामानंद जी, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, जितने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, रसिक वैष्णव थे, उनमें से सब दामोदर बोले, जिसको आप जानेंगे वही भाव को जानेगा। वो क्या प्रसादम प्रसाद अलेशानुगृहीत एवहि जनाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्व एको अपि चिरं विचिन्न। लाख कोटि जन्म तक खोजने पर भी उसको नहीं पाया जा सकता है। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो क्या होगा, वो अपने आप से ही जाने, जब देव जनाए, जिसको जना देते हैं वही जान सकता है और कोई नहीं।
चित्त बपुसा हृदय सगतिम बनती,
इसलिए भगवान की कृपा से उनको जान सकते हैं। इसलिए आप मालूम होता है आपने शक्ति संचरित इसके हृदय में किया है, इसलिए आपके भाव को जान सका है। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु जी ने कहा ये हमारे भावों को जगत में स्थापित कर सकता है, प्रचार कर सकता है। सब लोगों से अन्य प्रार्थना करते हुए कहा इस बालक पर आप सभी लोग कृपा करें, शक्ति संचरित करें, जिससे कि जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सके और ऐसी पुस्तकों को पारिभाषिक रूप में लिख सके। इसलिए उन सबकी कृपा से महाप्रभु जी करवा करके और स्वयं शक्ति संचरित करके रूप गोस्वामी के द्वारा ये भक्ति रसामी सिंधु उज्ज्वल मणि अलंकार कौस्तु और न जाने कितने ग्रंथ उपदेशामृत इत्यादि, उपदेशामृत हम लोगों के लिए, उत्तम भक्तों के लिए उज्ज्वल मणि इत्यादि ग्रंथों का प्रयोग। आज भी विद्वत समाज में, भक्तों के समाज में इन ग्रंथों का विशेष, यदि उन सब चीज़ों को पढ़ सकें, जान सकें, सुन सकें, हृदय में धारण कर सकें, तो हम लोग भक्ति क्या चीज़ है इसको समझ सकते हैं, विशेष करके प्रेमा आज ये भी करते हैं। वंशा कल्पतरु मोक्षा
ज्ञान तुंगानंदस्य ज्ञानं शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवतिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति केशगोपिकाकांत राधाकांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकुहरवद गदयाब्जवाचा श्रीनिपत्तभुवि दण्डवतो दुहितायते अस्याप्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा हरिभिके तव गणे गणनम्। अङ्गश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दिकृतेन्दीवरं जट्टञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दाम्। भक्त्या विहीना पराधलक्षे चित्तास्थामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणानि। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कपालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेहु सर्वभूतहृदयं मुन्ना। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम्। अक्षय तीज हरियाली हरियाली तीज हरियाली तीज है। आज पर ब्रज में सर्वत्र ही विशेष करके वृंदावन में और बरसाना में या और सब जगहों में बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं, विशेष करके वृंदावन में और बरसाने में अधिक महोत्सव होता है। आज देश विदेश के लोग वृंदावन में आए होंगे, बरसाना में भी दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन में भी। वृंदावन में न जाने कितनी पार्टियाँ, लीला पार्टियाँ, रासलीला की अपने अपने मंचों से विशेष रूप में हरियाली तीज के संबंध में नित्य गायन और लीलाएँ अपने वो सब करते हैं। आजकल श्रावण महीना चल रहा है, देखते हैं कि कोई समय नहीं, बेसमय नहीं, छोटी छोटी बूंदियाँ पड़ती रहती हैं, फुहारे पड़ती रहती, उसको झींसी भी कहते हैं, ब्रज में फुहारे धीरे धीरे वर्षा होते, खूब जोरों की नहीं, धीरे धीरे वातावरण शांत मधुर बना, प्रकृति सब जगह हरी साड़ी पहन रखी है। जिधर जाओ ब्रज में और समय सूखा रहता है, कहीं घास इत्यादि नहीं दिखाई देता। आजकल जितने कुंज होंगे, जितने पेड़ पौधे होंगे, लताएं होंगी, यहाँ पर घासी होंगी, सब हरा रंग सब, इसलिए इस तीज को श्रावण महीने की हरियाली तीज कहते हैं। जितनी भी ब्रज की लड़कियां हैं उनके हृदय में उमंग भर जाती है, हम पिताजी के घर में रहे, इसलिए पिताजी भी सब लड़कियों को अपने घर पर माताएं भी पिता माता नहीं है तो भैया भी बुला लाता है, वो घर में स्वच्छंद रूप से हिंडोले लगाकर झूलती एक दूसरों को श्रावण महीने का गायन करते हुए झूलती और झूलाती। अपने ससुराल में ये सब संभव पर नहीं है, अंकुश रहता है, मर्यादा का अंकुश है, इसलिए वो अपने पिता के घर में स्वच्छंद रीति से अपनी हिलती डुलती और बड़े आनंद से रहती। राधा जी की जोग माया के द्वारा शादी हो चुकी है, जावट में है, प्रतिवर्ष वो सोचती हैं यही ये आती है श्रावण का महीना, वो सब गिनने लगती हैं अंगुलियों पर अब तीज की इस दिन की है। और पिताजी या माताजी भैया को कब भेजेंगे जो हमको ले जाएंगे, सब की यही बात। जिस लड़की को माता पिता ने नहीं बुलाया वो बड़ी दुखी होती है। तो श्रावण का महीना बीतता चला जा रहा है, अमावस्या आ गई और अब छटपट करने लगी, श्रीमती जी भी राधा जी भी छटपट करने लगी। यहाँ पर स्वच्छंद रूप से अपनी सहेलियों से मिल करके ये हिंडोला इत्यादि पर नहीं बैठ सकती, इसलिए घर जाने के लिए पिताजी के लिहाज जाने के लिए छटपट कर रही हैं, अमावस्या से गिन रहे। अमावस्या से घर से कोई नहीं आया लिए आने उनको ले जाने के लिए, तो अत्यंत व्याकुल हो गए, अपने छत के अटारी पर चढ़ गई और मुख कर दिया बरसाने की तरफ में, बार बार कंठित होकर के और कौतुकुल्हा प्रांत होकर के कुतर में निहार रही हैं, भैया अब आए, अब आया, अब आया, या वहाँ से कोई आएगा, अब दूज भी आ गई, मैंने कल वाला दिन, अब रहा नहीं जाता। उस समय देखा एक बंजारा उसी रास्ते से जा रहा है। बंजारा किसको कहते हैं? बंजारा बंजारे होते हैं जो अपना सारा माल गाड़ी पर, गधों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर, बैलों पर लाद करके यहाँ से वहाँ चलते हैं। विशेष करके ये बंजारे ब्रज में बहुत थे। अब तो वो गवर्नमेंट ने उनको बसा दिया किसी किसी जगहों में, नहीं तो सब माल लिया दो चार दिन यहाँ ठहरे, जब नहीं हुआ तब फिर वहाँ चले गए, उधर से वहाँ चले गए, कुछ चोरी लूट मार जैसे कुछ हुआ बंजर भुला भुला करके जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कारीगरी भी जानते हैं, कौशल भी जानते हैं, चोरी की विद्या में, ठगने के विद्या में बड़े निपुण होते हैं। वैसे ही तो वो बन जा रहे राधा कुंड में गिरिराज गोवर्धन में बहुत रहते, अभी भी वो हैं, अभी भी देखते हैं सैकड़ों की संख्या में इधर से उधर में चलते हैं, बहुत कम हो गया। तो वो बंजारा कोई परिचित बंजारा, वो उधर से आ रहा है, रास्ते में जा रहा है, राधा जी ने देख लिया और पहचान लिया उस बंजारे को। बंजारे को पुकारने लगी, अरे भैया भैया उसको भी कहने लग गई ग्राम के नाते से। उसने देखा अरे वो तो महाराज विश्वभानु जी की ये लड़की है बुला रही, वो भी वो चला गया दरवाजे पर और ये भी उतर करके चले आई, उससे बातचीत कर रही हैं ये तुम गांव जाना, लौट जाना, हमारे पिताजी को कहना मैं आज तक रास्ता देख रही हूँ और अभी तक हमारा भैया नहीं आया हमें लाने के लिए। और सचमुच में कहते कहते वो रो पड़ी, आँखों में आंसू भरे। अब बंजारा भी ऐसे ही रोने लग गया है, बंजारा भी वैसे ही उसकी लड़की का भाव देख करके, मानो इसी की बेटी है, अपनी बेटी की ये स्थिति देख करके वो बंजारा भी रोने लग गया। उन्होंने कहा जैसे हमारे पिताजी को कहना है जैसे अब हमको भूल गए, मेरी मैया हमें भूल गई, प्रतिवर्ष तो इस समय अंततः बुलाती थी तो उसने बुलाया नहीं, हमारे घर के किसी ने हमको याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया। अरे गांव वालों में हमारी सहेलियां वो सब अपने अपने घर पूछने लगी, अनंग मंजरी आई थी नहीं उनकी छोटी बहन, और सबके लिए पूछने लगी। मैं समझती हूँ कि केवल मैं ही नहीं आई और बाकी हमारी सब सहेलियां हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पिताजी माताजी भाई सभी लोग भूल गए, गांव वाले भी मुझे भूल गए, उन्हें याद दिलाना कि वो तो छटपट करके रो रही है, व्याकुल है और आप लोगों ने उसको स्मरण नहीं किया। इस प्रकार से बहुत सी बातें उससे की और वो भी रोने लगा, भी रोने लगा। वो सचमुच में कहीं जा रहा था, वो लौट गया और लौट करके कहाँ पहुँच गया, परेशाने में पहुँच। और विश्वभानु महाराज से मिला, कृतिका जी मैया जी से मिला और रो रो करके सचमुच कहा आप लोग बड़े बेदर्दी हैं, निष्ठुर हैं, सभी लड़कियां चाहती हैं कि आज के दिनों में हम ये सावन के महीने में हम लोग अपने पिताजी के घर में रह करके स्वच्छंद रूप से झूले पर झूलें, गान गाएं और फुहारे में डोलें और बड़े आनंद से रहें, तो उन लोगों को याद नहीं आती तो उनसे कह देना। यही कह करके वो बंजारे ने उनको बतलाया। बंजारे के कहने से उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने तुरंत बुलाया श्रीराम को, अरे तुम्हें भी याद नहीं, तुम्हारी बहन वहाँ रो रही है, उसको जल्दी से जाओ बुला लो। उन्होंने उसके साथ में मिठाइयाँ तरह तरह की सब चीज़ें दे दी, जैसे जाता है भाई अपनी बहन के पास में। एक आदमी भंगी पर ले लेता है, अथवा कम हो तो अपने सिर पर ले लेता है, और तरह तरह की चीज़ें मिठाइयाँ खाजे और जो ब्रज में प्रचलित है वो सब चीज़ें लेकर के, कपड़े लत्ते सब लेकर के बैठते हैं। घेवर थैनी, ब्रज की घेवर थैनी बहुत प्रसिद्ध है, और पिताजी ने भर करके उसको भेज दिया। अब वो जाते हुए शर्मा रहा है कि मैं आज तक गया नहीं, क्या कहेगी मेरी बहन जो हमको याद नहीं, इसलिए कुछ लज्जित होता हुआ वहाँ पर गया। वो तो प्रतीक्षा कर ही रही थी भैया को देख करके, एकदम व्याकुल होकर के वो रोने लगी। दोनों भाई बहन मिले, दोनों रोने लगे। उन्होंने उससे कहा, भैया तुम लोग सभी लोग भूल गए, पिताजी भूल गए, भैया भी भूल गए, और तुम भी मुझे भूल गया। जब उन्होंने तो वो भी रोने लग गए। थोड़ी देर के बाद में जब उनको शांति हुई, तब उसने कहा, जैसे अभी हमारी सास से तुम कहो हमको ये छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, हर अपन। तो वो सास के पास में पहुंचा, और पहुँच करके उनसे कहा, जो पिताजी ने कहा है जो बहन को ले आना, आप इसको कुछ दिनों के लिए हम लोगों के घर।